मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। आज 27 फरवरी 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं कृष्ण कुमार सिंह, आप समस्तीपुर बिहार से हैं, रेखा आप फिरोजपुर सिटी पंजाब से हैं, राजीव उपाध्याय आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, पन्नालाल आप जोधपुर राजस्थान से हैं, प्रियंका चंसोरिया आप भोपाल मध्य प्रदेश से हैं और मुकेश पालरिया आप गंगानी जोधपुर राजस्थान से हैं। तो कृष्णा, रेखा, राजीव, पन्नालाल, प्रियंका और मुकेश, आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 27 तारीख है, कल 28 यानी कि फरवरी का अंतिम दिन और मित्रों इसी के साथ ही मार्च की शुरुआत हो जाएगी। पता नहीं आप सबको कैसा अनुभव होता है, लेकिन अब कम से कम मुझे तो यह अनुभव होता है कि जैसे दिमाग में मार्च शब्द कौंधता है कि मार्च शुरू होने वाला है, 2 दिन बाद ही मार्च शुरू होने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि क्लास शुरू होने वाली है। हालांकि उसके बाद 11 दिन और लगेंगे आप सबसे मुलाकात होने में, लेकिन एक भावना होती है कि नहीं, अब मार्च आ गया है ना, तो अब एक ऐसा धागा तैयार हो गया है कि उसका एक छोर यहां भोपाल में हम एकेडमी से जुड़े हुए लोगों के हाथ में है और उसके जो दूसरे धागों के छोर है जो ढेर सारे हैं वो सब आप लोगों के हाथ में है। और जैसे जैसे हम दिन के करीब पहुंचते चले जाएंगे 11 मार्च के, ये धागे भोपाल की तरफ सिमटने शुरू होंगे और आप सब सिमट करके 11 मार्च की 11 बजे एक हॉल में उपस्थित होंगे और हम सब होंगे और आपस में एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। मित्रों, मुझे लगता है कि इस तरह की भावनाओं का डेफिनेटली अनुभव आप सबको भी होता होगा और अगर नहीं हो रहा हो तो थोड़ा अनुभव करने की कोशिश कीजिए। यदि आप थोड़ा भी इस भाव को अनुभव में ला पाए तो आप देखेंगे कि यहां के क्लास में आपके बैठने की गुणवत्ता बदल जाएगी। 15 दिन जो यहां आप व्यतीत करेंगे वो बहुत आनंददायक हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात तो यह दोस्तों कि जिस उद्देश्य से आप यहां आ रहे हैं वह उद्देश्य आपके लिए बहुत सहज और सरल हो जाएगा। आप इन 15 दिनों के साथ न्याय कर पाएंगे। सच पूछे तो एकेडमी के हम लोगों के साथ भी आप न्याय कर पाएंगे और उससे भी बड़ी बात है कि जिन लोगों के सपनों को लेकर आप यहां आ रहे हैं उनके सपनों के साथ भी आप न्याय कर पाएंगे। बस थोड़ा सा एक काम आपको करना है और वो यह है कि अपनी अनुभूतियों को थोड़ा सा एकेडमी के इन 15 दिनों से जोड़ने का काम करना है। और मित्रों, आप शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि आपके पास इसका कोई अनुभव अभी तक न रहा हो, लेकिन अब करके देखिए। बहुत सी चीजें होती हैं जो हम पहली बार ही कर रहे होते हैं और जब एक बार उसका स्वाद मिल जाता है तो फिर आगे करने लगते हैं। तो आपके लिए यह अनुभव है कि आप उस अनुभव के स्वाद लेने की शुरुआत करें। दोस्तों, अब आइए मैं आज के आपको मुख्य विषय के बारे में बता देता हूं। आज के मुख्य विषय के अंतर्गत हम लोग भारत में शिक्षा के बारे में कुछ बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले दूसरी खबरों को देख लेते हैं। दोस्तों, जहां तक दूरदर्शन न्यूज का सवाल है और आपने रेडियो न्यूज में भी सुना है कि अब चुनाव होने हैं मेघालय नागालैंड में, चुनाव की तैयारियों को लेकर के डिस्कशन तो नहीं था, लेकिन खासकर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उत्तर पूर्व भारत के, उनको लेकर के दूरदर्शन पर एक बहस थी और मैं समझता हूं कि वो बड़ी महत्वपूर्ण बहस थी कि कैसे उत्तर पूर्व के बारे में जो सुदूर पूर्व शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो गलत है, हम सुदूर कैसे कह सकते हैं उसको। और अच्छा प्रश्न उन्होंने उठाया था और कैसे वहां का विकास इतना पिछड़ा हुआ है, कैसे हो सकता है और कैसे विकास की राजनीति की शुरुआत हो गई है, इन बातों पर बहुत अच्छी बहस हुई थी, शायद आप लोगों ने देखा और सुना होगा। जो महत्वपूर्ण खबर है एक दो मित्रों उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। रेडियो की तो जो पहली ही खबर थी वो प्रसार भारती को लेकर के थी कि जो मिनिस्टर हैं, सूचना प्रसारण मंत्री हमारी हैं, उन्होंने कहा कि प्रसार भारती को अपना जो कंटेंट है उसको मजबूत बनाना चाहिए, यानी कि जो कुछ भी वो प्रोवाइड करते हैं, जो जानकारियां देते हैं, अच्छा है कि वो और अधिक वजनदार हो, ये बात उन्होंने कही। मित्रों, यहां मैं थोड़ा सा आपको प्रसार भारती के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि मेल से मुझे लगा है कि स्टूडेंट प्रसार भारती को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ये क्या चीज है। फ्रेंड्स, आप मंत्रालय का नाम जानते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। जो स्मृति ईरानी है, मैडम स्मृति ईरानी, वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मंत्री हैं, राइट? तो फिर ये प्रसार भारती क्या है? बेसिकली प्रसार भारती एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक स्वायत्त संस्था है, बिल्कुल स्वायत्त संस्था, जो एक एक्ट के जरिए, संसद में एक कानून लाया गया था, उस एक्ट के जरिए इसकी स्थापना हुई है। याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, राइट? दरअसल हुआ यह कि 1997 में प्रसार भारती बना। इससे पहले होता क्या था दोस्तों? होता यह था कि जो रेडियो न्यूज है और जो दूरदर्शन की खबरें हैं, अब चूंकि धीरे धीरे दूरदर्शन प्रभावशाली होने लगा था तो इन पर आरोप लगता था। जो दूसरी पार्टी के लोग होते थे, राजनेता होते थे, वो आरोप लगाते थे कि ये जो दूरदर्शन है और जो ऑल इंडिया रेडियो है, ये बेसिकली सरकार के भोंपू है, यानी कि सरकार के प्रचार प्रसार का काम करते हैं, दूसरी खबरों को अवॉइड करते हैं, यानी कि सरकार के प्रचार तंत्र के हिस्से हैं। बल्कि एक समय तो मिसेस गांधी के समय में तो ऑल इंडिया रेडियो को लोग व्यंग से ऑल इंदिरा रेडियो भी कहने लगे थे। तो ये आलोचनाएं लगातार होती रहती थी। तो ये डिमांड हुई कि नहीं, इसको स्वायत्तता प्रदान की जाए, स्पेशली टीवी और दूरदर्शन की ही बात होती है ना, टीवी और ऑल इंडिया रेडियो की बात होती है। सूचना प्रसारण मंत्रालय में और भी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं ना, आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में जानते हैं, जिनकी प्रेस रिलीज आपको पढ़ने के लिए कही जाती है सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन की तैयारी में। खैर, हम उस पर नहीं जाते। प्रसार भारती के अंडर में याद रखिए कि ये दोनों ही हैं, दूरदर्शन और दूसरा ऑल इंडिया रेडियो, ये दो संगठन इसी के अंतर्गत काम करते हैं। तो लगातार आलोचना होती रही। तो अब ये हुआ कि इसकी विश्वसनीयता को कैसे कायम किया जाए, तो लगातार ये मांग होती रही कि नहीं, एक बॉडी बना दी जाए और वो बॉडी जो है इसके काम को देखे, और इस बॉडी पर सरकार का कोई सीधा नियंत्रण नहीं रहेगा। तो मित्रों, फिर यह सोचकर प्रसार भारती 1997 में अस्तित्व में आया। ये मित्रों है प्रसार भारती। प्रसार भारती के एक अध्यक्ष होते हैं, उसके फिर मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स मतलब प्राइवेट क्षेत्र के लोग होते हैं जो इनसे जिनका कुछ जुड़ाव होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं इस फील्ड के, इसके सीईओ होते हैं, और फिर वो इनके कामकाज की देखरेख होती रहती है और सरकार के नियंत्रण में ये सीधे नहीं होते। तो दोस्तों, ये प्रसार भारती के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है। मालदीव के बारे में आपने न्यूज सुनी कि मालदीव में अभी भी आपातकालीन स्थिति चल रही है, 5 तारीख से लगातार बनी हुई है। इस वहां क्या घटना घटी थी इसको मैं दोहराने की जरूरत नहीं समझता मित्रों, इससे पहले हम लोग बातचीत कर चुके हैं और अखबारों में भी लगातार आ रही है। बस मैं आपको याद दिलाना ये चाहूंगा कि जो मालदीव की घटनाएं हैं वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, न केवल इंटरनेशनल रिलेशन की दृष्टि से बल्कि आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी। तो लगातार आप मालदीव से संबंधित जो घटनाएं और सूचनाएं हैं उन पर अपनी नजर बनाए रखें और बकायदे महत्वपूर्ण घटनाओं को नोट भी करते जाएं। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय है भारत में शिक्षा। मैंने इस विषय को क्यों चुना? फ्रेंड्स, आपने रेडियो न्यूज में सुना कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जावड़ेकर जी, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है, बहुत बड़ी घोषणा की है। परसों अखबारों में भी इसके बारे में कुछ बातें आ गई थी, और वो ये कि जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको लगभग आधा करने की सरकार की योजना है। सिलेबस बहुत बड़ा है, यानी कि बस्ते का बोझ कम करने के बारे में सरकार सोच रही है, और इसके लिए उन्होंने जो भी इस फील्ड के लोग हैं, जानकार हैं, उनसे सजेशंस मांगे हैं, जो एकेडमिशियंस हैं उनसे पूछा है कि कौन कौन से पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किए जा सकते हैं, किन किन चीज बातों को निकाला जा सकता है, किन को शामिल किया जा सकता है, तो ये उन्होंने कहा है। और इसके पीछे जो उन्होंने बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि बस्ते का बोझ बहुत ज्यादा होने के कारण जो स्टूडेंट है वो पूरी तरह से किताबों में ही डूबा रहता है, और जो अदर एक्टिविटीज है वो उन अदर एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, और यदि वो अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है तो बट नेचुरल है कि उसका जिस तरीके से बहुआयामी विकास होना चाहिए, जिसे सर्वांगीण विकास कहते हैं, सर्व अंगों का विकास, तो यहां जो अंग है उसका मतलब शरीर से ही नहीं है, है ना, विचारों से भी है। उसकी पर्सनालिटी जितनी वर्सटाइल होनी चाहिए, जितनी बहुमुखी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है, उसके लिए मजबूरी हो जाती है कि वो किताबी कीड़ा बने। ये हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का उद्देश्य इसके पीछे है। तो आइए मित्रों, इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर बात शुरू करूं, मैं पहले ये जस्टिफाई करना चाहूंगा कि मैंने इस विषय को चुना क्यों है। दोस्तों, आप अपने सिलेबस में सीधे सीधे एजुकेशन को तो लिखा हुआ नहीं पाएंगे, शायद अप्रत्यक्ष रूप से वो वहां मौजूद है, लेकिन एजुकेशन पर मैंने देखा है कि एक दो साल में कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, एजुकेशन पर प्रश्न आते ही हैं। तो यह एजुकेशन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण, आप कह लीजिए प्रश्नों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपको दो प्रश्न पढ़कर सुनाना चाहूंगा ताकि आपको डायरेक्शन पता लग सके। सन 2014 ये सेकेंड पेपर में पूछा जाता है, जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में। सन 2014 में मित्रों एक प्रश्न पूछा गया, वो ये कि क्या आईआईटी / आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थानों को अपनी प्रमुख स्थिति को बनाए रखने की, पाठ्यक्रमों को डिजाइन करने में अधिक शैक्षणिक स्वतंत्रता की और साथ ही छात्रों के चयन की विधाओं / कसौटियों के बारे में स्वयं निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, बढ़ती हुई चुनौतियों के बारे में, चुनौतियों के प्रकाश में चर्चा कीजिए। शुड द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटीज / आईआईएम्स बी अलाउड टू रिटेन प्रीमियर स्टेटस, अलाउड मोर एकेडमिक इंडिपेंडेंस इन डिजाइनिंग कोर्सेज एंड ऑल्सो डिसाइड मोड / criteria of selections of students, discuss in light of the growing challenges। ये 12.5 नंबर का है मित्रों, ये 2014 का एक प्रश्न था। इसके बाद फिर आगे चल करके एक साल फिर इसी पर एजुकेशन पर प्रश्न पूछा गया है मित्रों, और वह है 2015 में, यानी कि कंटिन्यूएशन में। देखिए उसमें क्या प्रश्न है, भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए उसमें भारी सुधारों की आवश्यकता है, क्या आपके विचार में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं का प्रवेश देश में उच्च और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता की प्रोन्नति में सहायक होगा, चर्चा कीजिए। The quality of higher education in India requires major improvements to make it internationally competitive. Do you think that the entire entry of foreign educational institutions would help improve the quality of higher and technical education in the country? Discuss 12.5 number. यानी कि education एक important topic है। लेकिन आपने एक बात महसूस की होगी कि जो दोनों प्रश्न अभी मैंने आपके सामने रखे हैं, ये दोनों हायर एजुकेशन से संबंधित हैं, और अभी मैं जो बात आपसे कर रहा हूं ये बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन की बात है, प्राइमरी और मिडिल लेवल एजुकेशन की बात है, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें वही चल रही है। जो बस्ता के बोझ की हम बात करते हैं वो प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन की ही बात होती है। एक बात और मैं आपसे बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि ये जो दोनों प्रश्न मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, इनको सुनने के बाद आपके मन में थोड़ी सी आशंका पैदा हो सकती है कि यार इस पर हम कैसे तैयारी करें। आपको इन पर तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, इन पर जिन्होंने तैयारी की वो ऑलरेडी या तो सेलेक्ट हो चुके हैं या फिर अगले साल की तैयारी कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि एजुकेशन पर जो क्वेश्चंस आएंगे, या कह लीजिए कि भारत की समस्याओं पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आप कह लीजिए संप्रदाय की समस्या हो, चाहे वो गरीबी की समस्या हो, चाहे वो जनसंख्या की समस्या हो, ये तो बड़े परमानेंट किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। इन समस्याओं पर जो प्रश्न बनाए जाते हैं, जो पूछे जाते हैं, उनका जो झुकाव है या उनके पीछे जो ताकत काम कर रही होती है, जो दृष्टि काम कर रही होती है, वो होती है समसामयिकता की, करेंट अफेयर्स की। ये जो दोनों प्रश्न आपने सुने हैं बेसिकली ये उस समय ये जो बहुत अधिक चर्चा में थे, इन पर खूब बातें हो रही थी, इसका मतलब यह है कि अब जबकि एनसीईआरटी के सिलेबस को आधा करने की बात हो रही है, आप मान करके चलिए कि ज्यादा संभावना यही है कि अब यदि शिक्षा पर कोई प्रश्न पूछा गया और स्पेशली मेंस में, तो वह अब प्राइमरी एजुकेशन से ही रिलेटेड होगा। प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बात है। आपने न्यूज में यह भी सुना कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आने वाली है। इससे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आ चुकी है, जब राजीव गांधी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये फिर से इसके आने की संभावना है, जो बताया कि 1-1.5 साल इसमें लग सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। मित्रों, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और जबरदस्त कदम है। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री जी ने इस बार के ही अपने मन की बात में, एक मन की बात के तहत नहीं, जब वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे थे, कुछ विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी कि आप सब अधिक से अधिक नंबर लाने के चक्कर में मत पड़िए। राइट, इसका जो संकेत है वो यही है कि जो किताबों का ज्ञान है, उन किताबों के ज्ञान से बाहर निकल करके और आप कुछ और सोचने और कुछ और ज्ञान प्राप्त कीजिए। किताबों का ज्ञान तो एक बहुत ही प्राथमिक ज्ञान है, बहुत ही प्राथमिक ज्ञान है। और दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं, आप सबको इस बात का अनुभव भी होगा कि जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो काफी भारी भरकम नॉलेज वाली किताबें हैं। बेस प्राइमरी स्टेज पर इतने ज्यादा इस तरह के इंफॉर्मेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उनको अगर चाहे कि वो उन्हें समझ लेंगे तो वो समझना उनके वश की बात नहीं है, क्योंकि उनकी बौद्धिकता उस स्तर पर अभी पहुंची ही नहीं है कि उन जटिल चीजों को वो समझ लें। और यदि वो जटिल चीजों को समझने में अपना दिमाग खपाते हैं तो पता लगता है कि जो मूलभूत चीजें हैं उनके समझने का अवसर ही नहीं रह जाता, तो उनके इनफैक्ट कुछ भी समझ में नहीं आता। सच्चाई में बता रहा हूं, और मैं ऐसे स्टूडेंट की बात बता रहा हूं जो सीबीएसई 12th एग्जामिनेशन में 95 से ऊपर स्कोर करते हैं। मूलभूत चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन चूंकि वो रटने में बहुत बहादुर है, आप कह लीजिए, तो नंबर ले आते हैं। मित्रों, जब तक हम अपने स्टूडेंट्स को इस नंबर लाने की दुनिया से बाहर नहीं करेंगे, याद रखिए कि हम अपनी ही एजुकेशन सिस्टम के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। अभी अभी इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बातचीत के तहत जो एप्पल जो कंपनी है, आप जानते हैं, जो उसके जो को फाउंडर हैं स्टीव वोजनायक, आप देखिए कि इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बातचीत में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि जो भारतीय हैं वो मेहनती बहुत हैं, बहुत मेहनती हैं, लेकिन क्रिएटिव नहीं है, वो क्रिएटिव नहीं है। वो कहते हैं कि वो पैसा बहुत ज्यादा कमा सकते हैं लेकिन वो नया कुछ नहीं बना सकते, ये उन्होंने कहा है। अब आप देखिए कि ये बात अलग से तो विचार करने की है ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्राइमरी एजुकेशन से हमारे जुड़ती है। क्यों क्रिएटिव हम नहीं है, क्यों हम नया नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि हमने सारी अपनी जो बुद्धि है वो केवल रटने में ही खपा दी है। तो जब रटने में हमने खपा दी है, वहीं सारा स्पेस हमारा भर गया है, तो नए सोचने की कोई संभावना रह ही नहीं जाती। और हमारी जो परीक्षा पद्धति है वो भी इसी तरह की है। नहीं तो आप बकायदे परीक्षा के स्वरूप को चेंज करके और विद्यार्थियों से क्रिएटिविटी की डिमांड कर सकते हैं, वहां उसमें क्रिएटिविटी के बीज बो सकते हैं। और आपका जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो आप सबको, हम सबको इसलिए भारी पड़ता है क्योंकि हम पढ़ करके आते हैं रटने के पैटर्न पर, और सिविल सर्विस में वो एकदम चेंज हो जाता है। वो समझने की मांग करता है, वो आपसे अपनी सोच जानना चाहता है कि आपकी सोच क्या है, और वो पैदा नहीं होती क्योंकि हमारी जमीन उस तरह की बनी ही नहीं है। अब रेतीली भूमि पर दोस्तों सच पूछे तो गेहूं की खेती कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। यह हमारे शिक्षा व्यवस्था का बहुत मूलभूत संकट है। तो मित्रों, मैंने कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं, आप इन पर विचार करें। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सिविल सर्विस 2018 के मेन एग्जामिनेशन का है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मित्रों, न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लीजिएगा। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। और कुछ के उनमें से नाम है अक्षय सालवे, डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे हसनगढ़ हरियाणा से, प्रेम कुमार और तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।